नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया। मणिपुर में गोलीबारी की कई घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु। तेलंगाना सरकार ने 33 में से 29 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया। देशभर में गणेश चतुर्थी पर्व की आज से हर्षोल्लास के साथ शुरुआत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। और पेरिस पैरालंपिक्स के आखिरी 2 दिन में भारत अपने पदकों की संख्या 30 करने के सभी प्रयास करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक हैं। मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। श्री शाह ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर प्रदेश में पुरानी व्यवस्था पुनर्जीवित करने के प्रयासों का आरोप लगाया।
कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की।
गृहमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल और दलितों सहित किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है जो समाज से बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करता है। उपराष्ट्रपति ने नवनिर्मित स्कूल के बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि सैनिक स्कूल में श्रेष्ठ सुविधाएं हैं जो देश के अन्य सैनिक स्कूलों और मिलिट्री स्कूलों के लिए एक उदाहरण है।
पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ की प्रथम सैनिक स्कूल और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूँ। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहाँ किया है वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा।
उपराष्ट्रपति चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है। कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हम सभी को विकसित भारत के लिए सक्षम नागरिक और युवा तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भारत की विविधता से परिचित कराने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक पर्यटन पर ले जा सकते हैं। इससे उन्हें सीखने में मदद मिलेगी और देश के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को देखो अपना देश लोगों की पसंद प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने के लिए भी कहा ताकि वे इसमें भाग ले सकें।
हमारी कोशिश है कि उस राज्य के लोग वोट करके तय करके हमारे राज्य में ये नंबर 1 पर चीज है जो देखने जैसी है, योजनाबद्ध तरीके से वहां जाए, रात्रि को मुकाम करें, तो उस स्थान के लोगों को लगेगा भाई अब रोजगार की संभावनाएं बनेगी, तो होम स्टे बनने लग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले आ जाएंगे। यानी अगर हम सिर्फ स्कूल में बैठे बैठे तय करें तो इस देश में 100 टॉप डेस्टिनेशन टूरिज्म के हम 2 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षक छात्रों को विभिन्न भाषाओं में स्थानीय लोक कथाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि वे कई भाषाएं सीखें और भारत की जीवंत संस्कृति से भी परिचित हो सकें। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पटना में हाईटेक पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त 5,400 बिस्तरों वाले अस्पताल के विकास के लिए बिहार को सहायता प्रदान कर रही है। श्री नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में दो सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। वे दरभंगा में एम्स के लिए शोभन एक्मी बाईपास भी जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मणिपुर में कई स्थानों पर आज सुबह से हो रही गोलीबारी की कई घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी की घटनाएं नोंगचेपी क्षेत्र, मोइरांग शहर, जेरीबाम जिले के तांगचेंग खुंजाओ और काकचिंग जिले में हुई हैं। कल रात भीड़ ने दो मणिपुर राइफल बटालियन के हथियारों को लूटने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कल ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रक्षेपण के दौरान सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये प्रक्षेपण रणनीतिक बल कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। तेलंगाना सरकार ने राज्य में 33 में से 29 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। राज्य सरकार ने इन प्रत्येक जिलों में राहत कार्य तुरंत चलाने के लिए 3 करोड़ रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। इससे पहले 4 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर राहत अभियान चलाया जा रहा था। प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को विस्तृत ब्यौरा तैयार कर सोमवार तक रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 267 नामांकन वैध पाए गए, जबकि 62 पर्चे खारिज कर दिए गए। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए कुल 329 नामांकन भरे गए थे। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दल प्रचार तथा रैलियां कर रहे हैं। इस बीच चुनाव विभाग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 9 प्राथमिकी दर्ज की है। 5 सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर निलंबित कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 38 मामलों में जांच शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कई खामियों का हवाला देते हुए अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है। पिछले महीने की 9 तारीख को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद राज्य विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। पीड़िता की मृत्यु या उसके कोमा में जाने की स्थिति में विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार ने सभी वकीलों का 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में 30,000 वकीलों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वकीलों की पेंशन में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसने वकीलों के हित में लिए गए निर्णय से पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है।
3 बड़ी बड़ी योजनाओं को अधिवक्ताओं के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्रथम 5 वर्षों के लिए नए अधिवक्ताओं को 5,000 रूपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा सरकार की तरफ से। उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का और डेथ बेनिफिट मिलेगा और पेंशन की राशि 7,000 से बढ़ा करके 14,000 कर दी गई है, जो 7,000 कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @yayarnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। महाराष्ट्र में विदर्भ में भी गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
शहर के सार्वजनिक गणेश मंडलों ने गणपति के मूर्तियों की विधिवत पूजा अर्चना कर इनकी प्रतिस्थापना पंडालों में कर दी है। गाजे बाजे के साथ इन मूर्तियों को शहर के मुख्य चौराहों से घुमाया जाता है। इसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी और सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए हैं। नागपुर निगम द्वारा गणपति मूर्तियों के विसर्जन के लिए 400 से ज्यादा विसर्जन टैंक्स का भी इंतजाम किया गया है। आज और कल सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण बाजारों में मूर्तियां खरीदने के लिए भीड़ उमड़ी है। आज से 10 दिन चलने वाले इस गणेश उत्सव में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने 175 स्थानों पर गणपति प्रतिमाओं के स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉलों ने एक सप्ताह में ही 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया है।
कुल 183 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने मिलकर 2,51,485 गणेश मूर्तियां तैयार की है। जिला परिषद की जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा की सहायता से उम्मीद अभियान के तहत ये स्टॉल स्थापित किए गए हैं। इन गणेश मूर्तियों की बारीक और सुंदर कारीगरी, विशेषकर गणेश जी की विलोभनीय आंखें ग्राहकों को बहुत भा रही है। ये मूर्तियां किफायती दाम पर और 10% छूट पर उपलब्ध है। इसके अलावा गणेश मूर्ति खरीदने के बाद ग्राहक दिए गए QR कोड को स्कैन कर मूर्ति के साथ अपना सेल्फी भी अपलोड कर सकते हैं। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार देश के कई हिस्सों में सामूहिक उल्लास तथा सामाजिक ऊर्जा का एक सुंदर उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। खेलों के अंतिम 2 दिन में भारतीय खिलाड़ी पदकों की संख्या 30 तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस बीच पैरालंपिक्स खेलों में शानदार प्रदर्शन करके लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक्स खेलों में अभी तक भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य सहित 27 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर इनकी घोषणा की जाएगी। भारत ने चाड को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ने चाड की सरकार को आग की घटना में पीड़ितों के लिए आवश्यक जीवन रक्षक, एंटीबायोटिक्स और सामान्य दवाओं से युक्त चिकित्सा सहायता प्रदान की है। श्री जायसवाल ने कहा कि 2,300 किलोग्राम वजन की खेप आज नई दिल्ली से रवाना हुई। केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि टोक्यो में जापान विदेश व्यापार संगठन के अध्यक्ष सुसुमु काताओका के साथ उनकी सार्थक बैठक हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें चरण के अंतर्गत लगभग 1,37,00,000 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। 1 सितंबर से शुरू हुआ पोषण माह इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया। मणिपुर में गोलीबारी की कई घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु। तेलंगाना सरकार ने 33 में से 29 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया। देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व की आज से हर्षोल्लास के साथ शुरुआत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। और पेरिस पैरालंपिक्स के आखिरी 2 दिन में भारत अपने पदकों की संख्या 30 करने के सभी प्रयास करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।